क्या हुआ है, यहाँ क्या कर रही हो जान?
भागी मम्मी, क्लिनिक से भाग के आई हूँ ताकि आपसे मिल सकूं।
नशा छोड़ दो, ड्रग्स लेना छोड़ना पड़ेगा, इस लड़की कभी भूल जाओ।
वो मुझे ले जाएंगे।
बैठो, जब वापस आऊंगी उस लड़के का एड्रेस मेरी मेज पर होना चाहिए।
मैं थाने वापस नहीं जाना चाहता, जब तक मुमकिन हो वहां नहीं जाना चाहता। मेरी बेटी को नीचे बुलाओ।
हो गया बस। इंजेक्शन लगा दिया, अब जल्द सो जाएगी।
चली जाऊंगी यहाँ से, खुदाया या अल्लाह, छोड़ दो मुझे।
ये मोहम्मद जवाद जो भी बात कहता है मेरे जहन में बैठ जाती है। तुम तो मुझे जानती हो, मेरा हाफिजा कमजोर है, लेकिन ये छोटे बच्चों की तरह जो हर अच्छी बात जहां भी सुनते हैं फौरन उसको नोट कर लेते हैं अपनी डायरी में, वैसे ही जो कुछ मोहम्मद जवाद कहता है फौरन मेरा जहन नोट कर लेता है। एक बार बहुत पहले जब अपने पुराने मोहल्ले निजामाबाद में एक 20 साल का बेकार और फजूल लड़का था, उस वक्त मोहम्मद जवाद ने मुझे एक लड़का दिखाया जो नशे में था। कहा कि वो गलत रास्ते पर चलकर वहां पहुंचा, चूंकि उसके बाप ने हलाल खाना उसे नहीं खिलाया। वो बात मेरे जहन में रही जब तक कि मेरी आंख खुली और देखा घर दामाद बना बैठा हूं, अपने ससुर के घमंड और पैसे के साए में और उस बकवास हंसी के पीछे अपना इश्क खो चुका हूँ। अपना इश्क भी खो चुका था और गुरूर भी। उस वक्त मैंने अपने आप से कहा कि अगर अब हयूला के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हो तो खुद भी हयूला बनना पड़ेगा। इसलिए हयूला बन गया और पैसे कमाने लगा। अब जैसे भी हुआ, उस वक्त सिर्फ तुम मेरे पास थी। जानती हो जब तुम्हारी रिपोर्ट मुस्बत आई तो मैंने क्या सोचा? मोहम्मद जवाद की बात। मैंने तुम्हारी माँ को बर्दाश्त किया ताकि पैसे कमा सकूं। वो जो मैंने किया उसके लिए गुंडागर्दी करनी पड़ी। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे दो दो इश्क से बचना था। एक तो सबसे बड़ा इश्क है, वो भी माँ से इश्क। मैं इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा हूं ताकि अपने दिमाग की बात ना सुन सकूं। याद दिलाना, जब मेरी तबीयत और तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो तुमको एक अहम राज बताऊंगा। वो राज जो एक औरत का है जिसके जरिए मैंने पैसे कमाए। बेटी, मैं कभी तुम्हारा जहन नहीं पढ़ सका, लेकिन अगर तुम मेरे दिमाग की बात पढ़ सको तो ये मत सोचना तुम लोगों के लिए भी हयूला हूं। नहीं, तुम्हारे लिए चॉकलेट हूं। मेरा जहन पढ़ लो बेटी। जब तक तुम यहां रहोगी और इस बीमारी से लड़ती रहोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक हो जाओगी। कहो अच्छा। मैं जानता हूं नाइबी साहब वहां हैं और सुन रहे हैं। सुन लो,
अब अर्दलान तमजीद गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएगा। तुम्हारी एजेंसी से निकल जाएगा और अपने बाप की एजेंसी में चला जाएगा। अपने बच्चों के साथ रहेगा। सबसे कह देना, अपने साथियों से कह दो कि अर्दलान तमजीद, जो बचपन से तुम लोगों के जाल में फंसा हुआ था और पैसे कमाता रहा,
अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम्हारी गुलामी छोड़ रहा है। कह दो कि जानता हूँ वो मेरे पास है। कह दो कि जानता हूँ मेरे ससुर की तरह मुझे भी बर्बाद करना चाहोगे।
लेकिन ये भी कह देना, अगर अर्दलान को डुबोने की कोशिश भी की तो अर्दलान तुम सबको डुबो देने के लिए तैयार है।
सपना साहिबा बीजन की बेटी।
पहचान लिया?
6 साल कुछ ज्यादा नहीं है,
लेकिन इतना ज्यादा था कि मेरे बाप को भुला सकते थे। इतने पैगाम दिए कि मैं खुद आजिज आ गई। यहाँ उनके खिलाफ आप लोगों के पास इतने सबूत थे कि कभी उसका जिक्र उनके सामने नहीं किया। इसकी वजह मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे बाप की आप लोगों को जरूरत खत्म हो गई थी, इसलिए कि उनको छोड़ दिया और उनकी जगह उनके दामाद को खेल में शामिल कर लिया। मेरा बाप एक पिटा हुआ मोहरा बन गया और दलान आपके खेल का सबसे अच्छा प्लेयर।
मैं बीजन के साथ काम करता था। वैसे मेरी आदत है कि अपने मुखातिब से डायरेक्ट बात करता हूँ उसकी बेटी के जरिए में। पुदीने का ये शरबत है, कासनी, बीदमिश्क, बहार नारंज, शातरा, किस चीज के अरक का शरबत पीना चाहती हूँ?
शिकायत करने नहीं आई हूँ, वो भी शराबी बाप के लिए। जब से मैंने आँख खोली है, मेरा बाप एक मुस्तकिल शराबी था, इसीलिए कोई शिकायत का मौका उन्होंने नहीं दिया है। मैं अगर दुनिया के दूसरे कोने में रहने लगी तो इस वजह से नहीं कि मुझे अपने शराबी बाप के पास, मेरी मुश्किल कुछ और थी। लेकिन मेरा मुस्तकिल शराबी बाप आप लोगों के लिए कितना मुफीद था, तो क्या उनकी मजबूर बेटी आपसे कोई उम्मीद नहीं रख सकती?
मुफीद मुफीद तो मेरे लिए ये औरत है जो मेरे लिए काम करती है, पार्ट टाइम काम करती है, मुझसे नफरत भी करती है, लेकिन इतनी वफादारी उसमें पाई जाती है कि अपना काम ठीक से करती है। झूठ, धोखे और गद्दारी के बगैर बर्तन धोती है, सब्जियां साफ करती है। मुझे उसके सामने सिर्फ अपने बुरे रवैये से शर्मिंदगी होती है, लेकिन अर्दलान के एक एक कदम में फरेब था और झूठ। बीजन ने जो कदम उठाए वो भी फरेब और झूठ की बुनियाद पर थे। हम सब कुछ गंदे कॉकरोचों की तरह एक माचिस के डिब्बे में जमा हो गए थे और हिलते जुलते रहते थे। लोग हमसे नफरत करते हैं। इतनी दूर से यहाँ आई हो ये सब मुझे याद दिलाने के लिए? तुम मुझे क्या याद दिलाना चाहती हो? जो अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर दूसरे मुल्क में घूमने जा सकती है, उसकी जगह वहीं पर है। अब कर्ज खाओ की तरह मत बोलो, बात क्या है ये बताओ।
मुझे मेरे बच्चे चाहिए। कानून मुझे कोई हक नहीं देगा। मेरी अम्मी कहती है तुम छोड़कर वापस आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आखिरी रास्ता बताइए, कोई आखिरी रास्ता।
सिर्फ अपने बच्चे चाहिए, लेकिन कभी तुम्हें अर्दलान से प्यार था, अब नहीं है? नहीं है।
आखिरी रास्ता आप हैं, क्योंकि अर्दलान आपके दर का गुलाम है, वो दर जिसके बारे में सब जानती हूँ। तो फिर आप मेरी मदद कीजिएगा बच्चों को वापस लेने में। मुझे यकीन है कि आप मदद करेंगे। उसके रोबो दबदबे को मत देखिए, उसके पास सिर्फ आपकी हिमायत है और एक दोस्त जिसका नाम मोहम्मद जवाद है।
सलाम अलैकुम मोहम्मद जवाद।
अलैकुम सलाम।
कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा
ये मेरे बूढ़े दोस्त की क्या खैर खबर?
लाइब्रेरी में है, मैं उन्हीं के लिए दूध ले जा रहा था।
आप ये अल्लाह कहकर आगे बढ़िए, मैं दूध लेकर आ रहा हूँ।
आज़र नहीं है, आइए आइए तशरीफ लाइए।
आजकल कुछ हुआ है ना जिसकी खबर मुझे भी है और तुम्हें भी है ना?
जी हाँ। اردلان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مریم صاحب آپ کہیں دیکھا ہے۔
میری بچی پھر سے غم لے کر بیٹھ گئی۔ جب سے اسے دیکھا ہے 20 سال پرانے غم پھر سے تازہ ہو گئے ہیں۔
لے لیجیے۔
شکریہ آپ کا۔
آنٹی ایک فال مجھ سے خرید لیں گی؟
فال؟
جی۔
کتنے کی ہے؟
500 کا ایک ہے۔
کھانا کھا چکے ہو؟ یہ لو۔ السلام علیکم۔
زیارت قبول ہو۔
بہت مزہ آیا امی۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کی منت سماجت کام آ گئی ایک دن کی چھٹی کے لیے۔ یہ دیکھیے سوغات بھی لائی ہوں۔
بہت شکریہ۔
کوئی بات نہیں امی۔
ہلکی ہو گئی نا؟
ہلکی تھی، اور بھی زیادہ ہلکی ہو گئی۔ بابا کہاں ہیں؟
تو پھر مجھے بھی ہلکا کر دو۔
کیا مطلب؟
مطلب تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، شادی کر لو اور میری فکر کو بھی ہلکا کر دو، میرے دل کو ہلکا کر دو۔
لگ رہا ہے کہ مجھ سے اکتا گئی ہیں آپ۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ کو پریشان نہ کروں امی۔
شادی کر لو۔
اب لڑکا کہاں مل رہا ہے؟
مل گیا ہے، یہ پہلا تھوڑی ہے، کسی کو تو ہاں کہو۔
امی جان اصل میں میں
اس کو آنے دو، شاید اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے۔
ساری محبت آپ اور بابا نے اپنے قبضے میں کر لی ہے۔
اگر ہم دونوں نے ساری محبت قبضے میں کر لی تو اس کو دیکھنے کے بعد کیسے فوراً زیارت پہ چلی گئی کہ ہلکی ہو جاؤ؟
کس کو دیکھنے کے بعد؟
اردلان دمجی۔
امی جان اگر آج میں زیارت کرنے گئی تھی تو وہ سعید کی ہر سال کی نظر پوری کرنے کے لیے، اور اردلان کو دیکھ کر جو میری حالت ہوئی وہ آپ لوگ کی حالت یاد آ گئی تھی، اس لیے طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے۔ السلام علیکم بابا۔
السلام علیکم۔
علیکم السلام۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اس وقت بھی اپنے آپ سے ناراض ہوں اور یہ حالت ہو گئی ہے چونکہ کسی کے برے کام پر راضی ہو گیا۔ खुदा का सब्र बंदों से कहीं ज्यादा है। सब्र किया लेकिन आखिर उसके सब्र का भी पैमाना लबरेज हो गया और कहा, अरे भाई दुनिया का कोई मालिक है, अगर कुछ साल पहले दूसरे की इज्जत दांव पर लगाई तो अब तुम्हारी इज्जत की बारी है। उसकी बीवी 6 साल पहले उसे छोड़कर गई। अर्दलान तमजीद की बात कर रहा हूं। उसकी लड़की नशा करने लगी और वो खुद दर बदर उस लड़के की तलाश में है जिसने उसकी बेटी की हालत की है। अभी हाजी सानी के घर पर था, ये बातें मोहम्मद जवाद ने बताई हैं। कह रहा था कि अर्दलान की जिंदगी बड़ी शान से नहीं चल रही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे माफ कर देते हैं, लेकिन इस वक्त
मैं उस लड़के को जानती हूं। मुझे छुड़वाया था कि मुझसे बात ना करें। अम्मी, जुर्माने का पैसा कहां से लाएं? हाँ, एक बची हुई चूड़ी भी बेच दी। हाँ, अपना हाथ दिखाइए। चूड़ी के अलावा घर का कालीन भी गया। कबाड़िये को बुलाया था, अपनी इज्जत भी बेच डाली। तबाह हो जाऊं मैं।
इत्तेफाक से जब कबाड़ी वाला कालीन बगल में दबाए जा रहा था तो ये मुकरम साहिबा पड़ोस वाली कहने लगी कि अरे क्यों घर का कालीन बेच रही हो? तो लैला ने इज्जत बचाने के लिए कहा कि वो मेरे कॉलेज की फीस के लिए है। इसके बाद पता है मुकरम साहिबा ने क्या कहा? कहा, शाबाश अकरम, अपने घर का कालीन बच्चों की पढ़ाई के लिए बेच रही हो।
जब कसाई के यहाँ गोश्त लेने जाती हूँ ना तो 5,000 तुमान का गोश्त खरीदने में मुझे शर्म नहीं आती। नहीं है तो इसमें शर्म की क्या बात?
मैं मुनशियात फरोश नहीं हूँ अम्मी।
हाँ हाँ भाई, तुम तो इमला में फेल हुए थे, तभी उसके अजाले के लिए कालीन बेचना पड़ गया।
मैं अजाला कर दूंगा अम्मी।
वाकई वाकई तुम अजाला करोगे?
जी।
तो फिर उठो, वजू करो, नमाज पढ़ो और फिर कसम खाओ कि आप उस लड़की के आसपास भी नजर नहीं आओगे।
امی آپ کو میری شادی سے کوئی پرابلم ہے؟
ہاں اس نشئی لڑکی کے ساتھ شادی میں پرابلم ہے مجھے، اپنے سے بہتر ایک گھرانے سے شادی میں پرابلم ہے مجھے۔
کون ہم سے بہتر گھرانہ؟
تمہاری نیت سے مجھے پرابلم ہے۔
کیسی نیت امی؟
کہ پیسے بھی لاؤ گے اور دلہن بھی لاؤ گے۔
تو اس میں برا کیا ہے؟ اگر انسان کا سسر اس کی مدد کرے تو مشکل کیا ہے؟
اگر انسان کی خدا مدد کرے تو مشکل کیا ہے؟
امی اگر میری کوئی مدد کرے تو جیسے آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے۔
خدا ہے؟
خدا کہاں ہے؟ آپ کے پاس صرف گوشت خریدنے کے لیے 5,000 ہیں۔
اچھا تو خدا اس وقت خدا ہے کہ میرے پاس 40,000 تومان گوشت خریدنے اور کھانے کے لیے ہوں۔ تمہارے مرحوم باپ اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ آدھا گھنٹہ سوچنے کے بعد صرف ایک جملہ، وہ بھی سلیقے کا۔ میں بھی تم سے سلیقے کا جملہ کہنا چاہتی ہوں۔ جب تمہیں پکڑا تھا تو میں اس لڑکی کے گھر گئی تھی کہ دیکھوں اس کی ماں کون ہے، باپ کون ہے۔ میں کہنے گئی تھی کہ انسانوں کے بچے مرغی اور مرغے کی طرح نہیں ہوتے کہ انہیں گلی کوچوں میں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ خود سے بڑے ہو جائیں۔ ان سے کہنے گئی تھی کہ اپنے بیٹے کے پیروں کو توڑ دوں گی اگر وہ غلط راہ پر چلے گا، تو پھر آپ بھی اپنی بیٹی کے پیروں کو توڑ دیجیے گا۔ چونکہ اس نے غلط کام کیا ہے اور پرسوں سے ڈھنگا کپڑا پہن کر وہ کام کرنے جاؤ گے جو تمہارے ماموں نے تمہارے لیے ڈھونڈا ہے، مجھے تم سے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔ تمہارے مرحوم باپ کے ان کے نام سے جو پیسے آتے ہیں اسی سے ہم دونوں کی زندگی چل جائے گی۔ مشکل سے چلے گی لیکن چلے گی، بہت سے لوگوں کی زندگی کی طرح۔ اگر مہینے میں ایک بار بھی گوشت کھائے نا تو 1 گرام عقل بڑھے گی اور نہ گھٹے گی۔ لیکن تم جو کام کرو گے تم کماؤ گے اور بچاؤ گے اپنے مستقبل کے لیے، سیدھے جاؤ گے اور واپس آؤ گے، سمجھ گئے؟ فرضات سمجھ گئے تم؟
جی سمجھ گیا۔
استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اللہ
ماموں یہ کارپیٹ ہے؟
نہیں واشنگ مشین ہے۔
ارے ہاتھ کا بنائے کیا؟
اب زیادہ ہوشیار مت بنو لیلا۔
واہ ماموں کتنا بڑا ہے۔
کیسے فرزاد؟ السلام علیکم باجی۔
ارے ماموں گر نہ جائے۔
ارے تم پریشان نہ ہو، گرے گا نہیں، پکڑے ہیں۔ تمہارا بھائی مر گیا ہے جو قالین بیچنے لگی؟
موقع تھا نا، اسی سے کام چلا رہے تھے۔
یہ کیسی بات ہے؟ میرے بیوی بچے قالین پر رہے ہیں اور تم بچوں کے ساتھ موقع پر گزارو؟
بہت پیار ہے۔
اسے کھولو، اسے کھولو۔
بہت شکریہ، دیکھو وہاں سے صحیح کرو، اسے نکالو،
پسند آئے نا
جگہ بناؤ۔ بہت بہت شکریہ تمہارا۔
یہ ٹی وی کا انٹینا بھی خراب ہے، اسے بھی ٹھیک کر دیں گے۔
ارے وہ بھی ٹھیک کر دوں گا بھائی۔
بہت شکریہ ماموں۔
ہاں نیچے، ہاں نیچے کرو۔
ایک دوست تھا،
دو
بہت پیارا تھا،
تین
شکریہ آپ کا،
چار
چارہ نہیں تھا،
پانچ
جنگلا بنا تھا،
چھ
شیشہ ٹوٹا تھا،
سات
پتھر لگا تھا،
آٹھ
ڈانٹ پڑی تھی،
نو
مار پڑی تھی۔
دس
بھاگ گیا تھا۔
السلام علیکم، رہا کہاں ہے؟
رہا ابھی بتاتی ہوں رہا کہاں ہے۔ ارسلان جا بیٹا، تمہاری گاڑی آ گئی۔
السلام علیکم ارسلان۔
ڈرائیور صاحب اس کو بیٹھا لو۔
ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔
تم وہی ذلیل لڑکے ہو، صحیح ہو نا؟
کیا کہہ رہی ہو؟
تم وہی بدتمیز لڑکے ہو جس کی فوٹو اردلان کو ملی تھی۔
ٹھیک ہے بھائی، گریبان تو چھوڑے۔
ارسلان
کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ مطلب اس کے باپ سے کہا کہ میں یہاں کھڑا تھا تو میں اس گھر کا داماد ہوں، کل نہیں تو پرسوں اس کی بیٹی سے شادی کروں، اس وقت تو سب سے پہلے تمہیں گھر سے نکالوں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی اور بکواس نہیں کی تو تمہاری مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے، بات تو سنو تم۔
تم کو رہا سے کیا کام ہے؟ نہیں سنوں گی۔
بات تو
نشئی بنا دیا ہے اور کلینک
بات تو سنو تم۔ بوڑھی دیکھو، مجھے بار بار مجھے نشئی مت کہا کرو۔
بوڑھی عورت تمہاری ماں ہوگی، تم دوسروں کی لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟
بوڑھی بات سنا کرو، جو میں کہہ رہا ہوں بس بات میری سنو۔ میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں رہا سے بات کروں گا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔
خدا تمہیں ذلیل کرے، خدا تمہیں غارت کرے، بدبخت ذلیل بدتمیز۔
ہیلو، गुलबानो जवाब क्यों नहीं दे रही?
अरे कुछ मसरूफ थी।
अरसलान चला गया?
अरसलान? जी जी जी
जी गया।
कुछ हुआ है गुलबानो?
क्या हुआ है
गुलबानो? तुम जब तक बात बनाओगी कयामत आ चुकी होगी। जब झूठ नहीं बोल सकती तो सच तो बोलो। अरसलान ठीक है ना?
मैं बाहर जाना चाह रही थी तो मैंने देखा है किसी का खत पड़ा है। दरवाजा खोला तो देखा वही बदबख्त लड़का बाहर खड़ा है, उसी ने खत फेंका था।
बदबख्त लड़का कौन है?
अरे वही जिसकी फोटो राहा के कमरे में मिली थी।
कह रहा था राहा कहाँ है? मुझे आपकी मजलूमियत और बुरी हालत और दूसरी तरफ राहा की बेअकली याद आ गई। बस मुझे भी गुस्सा आ गया। उसने अरसलान की सर्विस वाले को भी खूब मारा।
मैं वो खत पढ़ूं?
तुम पढ़ सकती हो क्या?
अपनी हद तक तो हाँ पढ़ सकती हूँ। वैसे बहादुर भी यहाँ है। ठीक है होल्ड कीजिए, ये खत तुम उनके लिए पढ़ दो।
अर्दलान सलाम।
अर्दलान साहब।
अर्दलान साहब सलाम अलैकुम। अर्दलान तमजीद साहब सलाम अलैकुम। अब हिसाब का वक्त आ गया है।
मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ।
आपके कर्ज लेने के बारे में, फैक्ट्री चलाने के बारे में ताकि उससे कर्ज ले सके, मुख्तलिफ जमीनों की खरीद व फरोख्त, बहुत से गैर कानूनी घर बनवाना। मैं आपके तमाम गलत कामों के बारे में जानता हूँ। मैं आपके तरह लालची नहीं हूँ और ये राज छिपा भी सकता हूँ। लेकिन राज छुपाने के लिए मुझे बस 500 करोड़ तूमान दे दीजिए। बस हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। आप भी मुझे समझा करें। अगले खत में आपको तमाम सबूत भेज दूंगा जो मेरे पास मौजूद है।
यह खातून उस लड़की की अम्मी है।
मेरे और राहा के बाप के बीच कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय एक बात के। हम दोनों जानते हैं कि तुम लड़के मेरी बेटी के लिए जहर हो। कल रात मेरी बेटी क्लिनिक से भागकर मेरे पास आई थी। मैंने उसे जबरदस्ती तुम्हारा एड्रेस लिया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और इस बर्बादी में तुम जिम्मेदार हो। मैं उसे ले जा रही हूं और कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन एक मुश्किल है। और वो छोटी सी मुश्किल तुम हो। जब तक राह का काम हो उसे ले जा सकूं तो टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लेकिन बहर टाइम लगेगा। उस वक्त तुम रेहा का पीछा छोड़ दो। मैं और रेहा के बाप एक दूसरे की जाने दुश्मन हैं, लेकिन तुमसे बदला लेने के लिए करीबी दोस्त भी बन सकते हैं। रेहा के आसपास नजर ना आना और रेहा की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो। समझे लड़के?
चले मैं उसे भूल गया।
क्या रेहा भी मुझे भूल जाएगी?
हाँ भूल जाएगी।
शर्त लगाएं? शर्त लगा सकते हैं, वो मुझे मुझसे ज्यादा चाहती है। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान नहीं कर सकता, अपनी अम्मी को, अपनी बहन को कुर्बान नहीं कर सकता। लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर देगी, अपने बाप को छोड़ देगी, अपनी अम्मी को छोड़ सकती है, फौरन छोड़ सकती है, पूरी जिंदगी देने को तैयार है।
फरजाद, तुम उस लड़की के साथ हरगिज शादी नहीं कर सकते, और अगर कर ली तो फिर मुझे भूल जाना।
मैडम, मैडम, आंटी,
क्या चाहिए तुम्हें? हमारे जैसे क्या चाहिए? रहा को नशा करवाया, सुख नहीं मिला। अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके साथ शादी करके तुम भी ऑस्ट्रिया आ सकोगे तो तुम्हारी गलती है।
आप और ऑस्ट्रिया जाएं भाड़ में।
तमीज।
मैं जब उससे मिला वो नशा करती थी, मैंने बस उसकी मदद की, अरे गहरे के सामने हाथ न फैलाए।
जो खर्चा किया है उसका हिसाब उसके बाप को दे दो।
हम लोग उसे रसीद कहते हैं।
जो भी कहते हो।
जो भी का क्या मतलब? मेरी बात गौर से सुने। मुझे तुम्हारी राह में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जो चाहत उसके दिल में है उसके जरिए मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मैं मामला करना चाहता हूँ, बस उसका बाप मेरी जेब गर्म कर दे, उसके बाद बाकी मुझ पर छोड़ दे। अब बताओ उसके बाप से कहाँ मिला जा सकता है, बताओ, ताकि मामला तय हो जाए। देखो रेहा की अम्मी, मैं बस चाहता हूँ मेरी अम्मी 2-2 लाख का गोश्त खरीद कर घर लाया करें, और तुम अपनी बेटी के साथ वहीं ऑस्ट्रिया में वहीं पड़ी रहो, ठीक है ना? उसके बाप से तो कुछ ले सकता हूँ ना, तुम दोनों के आपसी ताल्लुकात भी तो अच्छे नहीं, मुश्किल नहीं है ना? नहीं है। अब एड्रेस दो, इस वक्त उसका बाप कहाँ है?
ये मेरा हक है कि आखिरी बार अपनी बेटी से मिल सकूं।
मेरी बात सुनो, तुम्हारी मदद करूंगा, डूबोगे नहीं।
मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। मैंने रहा कि अम्मी को भी बताया था कि मैंने कहा।
तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का मेरे सामने नाम ले रहे हो? तुम उसकी अम्मी हो ना?
क्या सुधार दिया उसे?
अरे मुझे छोड़िए, अरे मुझे इस लड़की से शादी करने, वो भी करना चाहती है, प्रॉब्लम है तो जेब में हाथ डालिए।
ये बच्चा तुम्हारी मदद करना चाहता है।
किसने उसे मारा? मैं उसको बर्बाद कर डालूंगा जो भी मेरी बेटी की खुशी ना देख सके।
تو که برای من همه کسی، اگه هنوزم عاشق منی، چرا به داد من نمیرسی؟ من از تصور نبودنت روشونه یه تو گریه می کنم، منی که دل بریدم از همه،